कि जमीन को टच करना। अल्लाह ने ये कहा है यमशी, चलता कैसे है, कैफियत क्या होती है, मुकिब्बन। अब मुकिब्बन के मीनिंग को जहन में रखें, इतना झुक जाना, और मुकिब्बन के बाद अल्फाज क्या आए हैं, कितना झुक जाना, अला वजह ही, चेहरे की बात हो रही है, चेहरे को इतना झुका देना दैट यू आर टचिंग द ग्राउंड। ये कौन सी कैफियत लग रही है, सजदा। कभी कोई सजदे में चल सकता है, सीम्स वेरी ऑड ना, सजदे में आप चल तो नहीं सकते हैं? मतलब आप अपने चेहरे पर रगड़ लगाएं, इज इट पेनफुल, इट्स शर्मिंदगी से ज्यादा इट्स वेरी पेनफुल। आप करके देखें जायनमाज, हम तो कारपेट्स और जायनमाज के ऊपर होते हैं ना, बच्चे कहेंगे अम्मा को क्या हो गया, बट यू जस्ट ट्राई इट, आपको वो फीलिंग्स आएंगी जो अल्लाह ताला इस आयत में कैप्चर किए हुए हैं अल्फाज में इंसानों को बताने के लिए। मुकिब्बन, चेहरे को इतना झुका देना कि उस चेहरे का जमीन को टच करना, और अल्लाह कह रहा है यमशी अला मुकिब्बन, चल रहा है वो चेहरे के बल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन। एक तरफ हम कहते हैं कुरान अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल्स नहीं देता, कुरान इज वेरी प्रैक्टिकल, तो फिर ये एग्जाम्पल क्या है। मुफस्सिरून कहते हैं इस जुमले का मीनिंग फिगुरेटिव है, कि जो अल्लाह ताला ने यहां पर कहा है अफमई यमशी मुकिब्बन अला वजहे, क्या कैफियत है एक इंसान की, अल्लाह बताना चाह रहा है ये वो इंसान है जिसका अनइवन लाइफस्टाइल है, जो जिंदगी में खड़ा होता है फिर ट्रिप कर जाता है फिर गिर जाता है, फिर उसी कैफियत पर थोड़ा चलता है, ट्रिप की हुई कैफियत में, गिरी हुई कैफियत में, फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिरता है, फिर उस कैफियत में चलता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो ये एक ऐसे इंसान की कैफियत है जो कॉन्स्टेंटली खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है, और गिरता भी कैसे, मुंह के बल, मुंह के बल गिरता है। तो स्कॉलर्स ने यहां पर तीन डेफिनेशंस बताई हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं। वो कहते हैं एक, कब इंसान खड़ा होता है और गिरता है, खड़ा होता है और गिरता है। वो कहते हैं एक ये कि इंसान बहुत ही अंधेरी जगह पर हो जहां उसको पता ही ना हो कि उसके सामने है क्या, तो वो चलने की खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। सो द कंडीशन नंबर वन, कैफियत नंबर वन, कि बहुत जुलुमात हैं, अंधेरे हैं जिसने वो चलने की कोशिश कर रहा है। कैफियत नंबर दो, वो इंसान बहुत ही स्लिपरी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, वेरी अनइवन, वेरी अनइवन, स्लिपरी। स्लिपरी रास्ते पर क्या होता है, अब खड़े होते हैं गिर जाते हैं, खड़े होते हैं बर्फ पर, वो बर्फ जिस जिसके ऊपर कोई चल के जा चुका है काफी दफा पे, फ्रेश बर्फ पर आप चलते हैं आपका पांव जम जाता है, उसमें फ्रिक्शन होती है, वो बर्फ जिसको वो गिरे हुए काफी टाइम हो गया और उसके ऊपर से आप देख रही हैं कि अब उसका वो बर्फ की लेयर पूरी बन गई है, इट्स वेरी स्लिपरी, उस पर ये कैफियत आती है, आप चलते हैं गिरते हैं, चलते हैं गिरते हैं। सो दूसरी कैफियत क्या है, इंसान ने बहुत स्लिपरी रास्ता लिया हुआ है। और तीसरी कैफियत क्या है, इंसान अंधा है, इसलिए वो खड़ा होता है और गिर जाता है, चलना शुरू करता है और ट्रिप कर जाता है। तो अल्लाह कह रहा है एक ये कैफियत है, स्लिपरी रास्ता या अंधेरा या एक इंसान अंधा, इसके मुकाबले में दूसरा कौन है, अम्मई यमशी सवीयन अला सिराते मुस्तकीम, दूसरा इंसान सीधे रास्ते पर ईमान के नूर के साथ, सिरात मुस्तकीम, उसके हाथ में ईमान की टॉर्च है और वो इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है, उसका हर दिन उसको ग्रो करता है, उसका हर दिन उसको उसके मकसद के करीब लेकर जाता है, उसका हर दिन उसको फ्लरिश करता है, उसका हर दिन उसको रहमान के करीब करता है। जो इंसान अनइवन लाइफस्टाइल गुजारता है, पिछली आयत से कनेक्ट कर लें, अपने आप को अल्लाह से गाफिल रखता है, जनरल लाइफ में मुश्किल आती है अल्लाह को याद करता है और वादे करता है, मुश्किल टल जाती है अल्लाह को भूल जाता है। उसी अनइवन लाइफस्टाइल को पहली मिसाल में मेंशन किया गया है, वो जैसे कि जो अंधा है, वो जैसे कि जो स्लिपरी रास्ते पर है, वो जैसे कि जो बहुत ही अंधेरी जगह पर है। तो बताओ, रोशनी वाले रास्ते वाला बेहतर होगा या अंधेरी रास्ते का मुसाफिर बेहतर होगा? अल्लाह ने बता दिया जिस इंसान की जिंदगी में अनइवन लाइफस्टाइल नहीं होता, तौहीद हर जगह आ जाती है। मेरा स्कूल हो, मेरा घर हो, मेरा कॉलेज हो, मेरी यूनिवर्सिटी हो, मेरा मैका हो, मेरा ससुराल हो, मेरे डिसीजंस लेना हो या मेरे अपनी औलाद के लिए चॉइसेस करना हो, अगर इन सब में तौहीद आ जाती है तो हमारी जिंदगियों में हमारी कैफियत होगी यमशी सवीयन अला सिरात मुस्तकीम। आप स्ट्रेट रोड पर स्मूथली ईमान की टॉर्च हाथ में पकड़कर फर्म ऑन द ग्राउंड चलती रहेंगे। और अगर ये नहीं होगा, अगर बिट्स एंड पीसेस में इस्लाम होगा तो क्या होगा? इंसान बार बार ट्रिप करेगा, गिरेगा, और गिरेगा कैसे? मुंह के बल। जब मुंह के बल इंसान गिरता है तकलीफ होती है, डज इट हर्ट? और फिर बर्दाश्त, दर्द बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। ऐसा इंसान फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। जब ही पैसे के बावजूद, दुनिया के बावजूद, मालो दौलत के बावजूद, बेतहाशा अपना बैंक बैलेंस होने के बावजूद, पैसों वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं, शोहरत वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत दुनिया का माल होने के बावजूद डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इंसान अपने आप को कमरों में बंद कर लेता है। दुनिया हाथ में मौजूद है, इंजॉय करने के काबिल नहीं है। क्यों? अनइवन लाइफस्टाइल। जिस दिन इंसानों को यह हकीकत समझ आ गई, हम इंसान अपनी दुनिया में कभी ऐसा नहीं खोएंगे कि हम अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के दीन को पैरेलल लेकर चलते रहें। जिस दिन हम इंसानों को यह हकीकत समझ आ गई, हमारी जिंदगी के जुलुमात दूर होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की नाफरमानी का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं, याद रखें कुछ रास्ता स्मूथ होगा, कुछ रास्ता स्लिपरी होगा, और स्लिपरी रास्ता जैसे ही आएगा हम गिरेंगे, और गिरेंगे तो चोट लगेगी। जब चोट लगेगी तो वो जो शैतान है वो फौरन आकर किससे बदगुमान करेगा? अल्लाह से बदगुमान करेगा। तो जो चार नेकियां हाथ में होंगी उनसे भी दूर कर देगा। ये हम इंसानों के लिए बेहतरीन मिसाल है। अल्लाह ने कहा है आंखों वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकते। जिंदगी में एक तरफ हो जाइए, कैसा इंसान है वो जिसने अपने दो पांव दो कश्तियों में रखे हुए? स्टेबल खड़ा रह सकता है? एक ही कश्ती में आपके दो पांव तो आपकी हालत क्या हो रही होती है? हम लोग जिनको यूजुअली कश्ती में खड़े होने की आदत नहीं होती है, आप कहां दो कश्तियों में दो पांव रखे हो, अनस्टेबिलिटी आपको अंदाजा हो सकती है कितनी होगी। एक राह के मुसाफिर बन जाइए। कब तक इस तरह करते रहेंगे? कब तक दरवाजों में लटकते रहेंगे? मना की भी हा फम शूफी मना की भी हा, याद है ना, मुकिब्बन उसी से बना है। कब तक दीन के किनारे किनारे पर चलते रहेंगे? किनारे किनारे पर कौन चलता है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में दीन के? मुनाफिक। जब दीन की तरफ से कामयाबी मिलती है दीन की साइड पर आ जाता है, जब उसको लगता है दीन पर चलने की वजह से मुश्किल आने वाली है भागकर दूसरी साइड पर चला जाता है। किनारों किनारों पर सिर्फ और सिर्फ मुनाफिक चलता है। उदखुलु फिस्सिल मिकाफा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाँ, कोई इंसान ग्रेजुअली अभी किसी स्टेज पर हो सकता है कि अभी वो अपने अंदर इतनी एनर्जी नहीं देख रहा कि वो अपने आप को पूरे का पूरा इस्लाम में ले आए। ऐसे में एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। एंड गिव योर सेल्फ टारगेट। आप नहीं समझ सकते, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपका सेहतमंद बच्चा जब वो 3 साल या 4 साल का था, चले 6 साल का था, तो क्लास 1 में था, सेहतमंद बच्चा फिजिकली और मेंटली, अब वो हो गया 18 साल का, अब वो सिर्फ क्लास 2 में बैठा हुआ है। दीन के मामले में हम यही करते हैं। हम कहते हैं अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स ले रही हूं। कब तक बेबी स्टेप्स लेते रहेंगे? द टाइम इज लिमिटेड। इसीलिए देखिए, अब अगला हिस्सा जो शुरू हो रहा है उसमें वार्निंग भी है, उसमें सवाल भी है, और उसमें अपने रसूल के जरिए इन तमाम लोगों को जो कुरैश के नाफरमान थे, और बाद में आने वाले तमाम लोगों को जिनके पांव जो थे वो कभी इधर और कभी उधर जाते थे, उन सबको नसीहत की गई। सूरत का आखिरी हिस्सा सेक्शन 4 आयत नंबर 23 से आयत नंबर 30 तक है। अब आपको आप इसमें देखेंगे, इसमें कुछ आयात जो हैं वो कुल से शुरू होंगी, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अब आयात को कहलवाया जाएगा खास तौर पर। और इसी पैसेज से आपको अंदाजा होगा कि रहमान की मोहब्बत हर वक्त नहीं मिल सकती, ये टेम्पररी चीज है, ये खींच ली जाएगी एक वक्त में। जिंदगी का रिस्क हमेशा नहीं रहेगा, ये खत्म कर दिया जाएगा। इन अमसका रिस्क का अल्लाह जिस वक्त चाहेगा अल्लाह इमसाक की कैफियत डिवेलप कर देगा, अल्लाह रोक लेगा। आयत नंबर 23 में और 24 में खूबसूरती के साथ इंसान की पूरी जिंदगी को दो आयात में कैप्चर किया गया है. मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ. इंसान का पूरा लाइफ साइकिल दो आयात में मौजूद है. आयत नंबर 23, कुल, इनसे कह दीजिए, ये कौन से लोग हैं जो कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं कभी गिरते हैं. पिछली आयत में वही थे ना. तो अब अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता रहा है, कब तक डिली डैली करते रहोगे, कब तक कहते रहोगे मैं बेबी स्टेप ले रही हूं, कितना टाइम है तुम्हारे पास, जरा टाइम लाइफ स्पैन तो देखो इंसान का. कुल हुवल्लज़ी, वो ही जात है जो, अनशाअकुम, जिसने तुमको यूथफुल बनाया. दिस अ ब्यूटीफुल वर्ड अनशा. उर्दू के तर्जुमे में क्या लिखा होता है, पैदा किया. हाँ, पैदा किया मतलब नहीं होता, मैं बताती हूँ अभी. अनशाअकुम, वो जिसने तुमको ग्रो करके मैच्योरिटी पर पहुंचाया, विल बी द राइट वर्ड, दिस विल बी द क्लोजेस्ट वर्ड टू द डिक्शनरी नशा से. कुल हुवल्लज़ी अनशाअकुम, वही है जिसने तुम्हें ग्रो करके मैच्योरिटी तक पहुंचाया. वजअअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़ईदा, और उसने तुमको समाअत दी, उसने तुमको बसारत दी, वल अफ़ईदा, उसने तुमको दिल दिए. कलीलम मा तशकुरून, ताज्जुब है कितने कम हैं जो शुक्र गुजार होते हैं. नशा का मतलब होता है, देखें पैदा करना, समझ लें कि बहुत सतही मफहूम लिखा हुआ है इसका. नशा का मतलब होता है किसी को पैदा करना, फिर उसको स्प्राउट करना. जमीन में आपने बीज डाला, फिर कुछ दिन के बाद वो बाहर निकलता है सीडलिंग की शक्ल में, फिर आपको कितने दिन तक उसकी हिफाजत करनी होती है, फिर कहीं जाके वो एक पौधा बनता है, और फिर कहीं जाकर वो एक स्टेबल दरख्त बनता है. नशा कहते हैं किसी चीज का स्प्राउट करना, राइज करना, और अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच जाना. दिस इज द मीनिंग ऑफ नशा एज कंपेयर टू खलका. खलका सिंपल, पैदा करना. याद है आपको मैंने फातरा का मफहूम भी बताया था, अब आपको फतरा भी याद रहेगा इंशाल्लाह, लिखा होगा आपने. तो नशा होता है किसी चीज को इतना ग्रो करना, उसको फैलाने के बाद, उसको स्प्राउट करने के बाद, कि वो अपने स्टेमिना पर, अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचाए, किसी चीज को फुल मैच्योरिटी तक पहुंचाना. अगर आप शान नजूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि मक्की दौर है, तो इसी आयत में मक्का वालों को भी अल्लाह ने सोचने पर मजबूर किया. मक्का वाले क्या थे, अगर मक्का वालों के पास आबे जमजम ना होता तो मक्का की वैली कभी आबाद ना होती. इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़कर गए थे, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, आसपास चिड़िया परिंदा जानवर कुछ नहीं था, पानी नहीं था ना, नो लाइफ. जहां पानी नहीं होता वहां लाइफ नहीं होती. अल्लाह ने कुरैश वालों को सोचने पर मजबूर किया कि देखो अल्लाह ने तुम्हें ग्रेजुअली ग्रो किया है, इब्राहिम के जरिए, इस्माइल के जरिए यहां पर आबे जमजम लाया गया, उसके बाद अल्लाह ने यहां पर आबादियां ग्रो करनी शुरू की. फिर आपको आयात मिलती हैं रिहलत शिता वसैफ, अल्लाह ताला ने इतनी आबादियां इनकी ग्रो की कि इनके काफले पूरे अरब में जाते थे, सीरिया तक जाते थे, और कुरैश के काफले पर कोई हाथ नहीं डालता था, इसलिए कि काबा के कस्टोडियन थे. अल्लाह ने तुमको कैसे ग्रो किया, अल्लाह ने इसको बलदन आमिनन बनाया, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी. आज भी कल्टीवेशन वहां जीरो है, लेकिन दुनिया का फल आपको वहां मिलता है. अल्लाह ने इनको कैसे ग्रो किया, आज तक इनकी वो ग्रोथ पूरी दुनिया देख रही है. उस वक्त तो ऑयल नहीं निकला था ना, अल्लाह को मालूम था. आज भी अल्लाह ताला इनकी ग्रोथ दुनिया को दिखा रहा है कि अल्लाह ने वहां पर कितना ऑयल निकाला है. तो अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो आयात का मफहूम मक्की दौर के हिसाब से हो गया. जनरल फॉर्म में अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह हर इंसान को, हम में से हर इंसान को इतना ग्रो करता है कि हम अपनी मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं. हम में से जितने लोग इस वक्त जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने अकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह हमें टीनेज के बाद शबाब देता है. एक होता है अशुद्धा, अशुद्धा इज द टीनेज. टीनेज में आपके सेंसेस, टीनेज में जो आपके मैच्योरिटी होती है वो आपको अचीव हो जाती है. टीनेज इज द मोस्ट इमेच्योर एज. जितने बच्चे यहां बैठे हैं, बच्चे समझते क्या है, ओहो अब तो मैं टीनेजर हो गया, मुझे सब पता है, अब तो अम्मा को कुछ भी नहीं पता, मुझे सब पता है। अच्छा, बच्चों का एक फेवरेट जुमला होता है, मैं तो शुरू से यही करता हूँ। अम्मा कहती लो पैदा मेरे सामने हुआ, और मुझे बता रहा है मैं शुरू से यही करता हूँ। बच्चे यूजुअली समझते अपने आप को टीनेज में बड़े फन्ने खान है, मतलब सब पता है मुझे, इंटरनेट मुझे आता है, स्मार्टफोन्स हैंडल करना मुझे आते हैं, ऐप डाउनलोड करना मुझे आता है, गेम्स खेलने हो तो वो मुझे पता है, फ्रेंड्स को बताना हो तो मुझे पता है, यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करनी हो। इंसान समझता है कि वो अपनी जवानी में अपनी मेच्योरिटी पर आ गया, बट टीन एज इज नॉट द मेच्योरिटी वाली एज, इट्स द मोस्ट इमेच्योर एज। आप देखें जो टीन एज बच्चे होते हैं वो जब गुस्सा करते हैं तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं, हंसते हैं तो ओवरली हंसते हैं कि अम्मा परेशान हो जाती हैं दूसरे कमरे से, किसे क्या हो गया, गम का शिकार होते हैं तो ओवरली गम का शिकार हो जाते हैं। मतलब अगर अम्मा ने कह दिया कि मैंने ईद के सेकेंड डे फ्रेंड्स के घर नहीं जाने देना, अब लगा जैसे क़यामत ही आ गई, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई बात नहीं दूसरे दिन नहीं चौथे दिन चले जाना। नहीं, टीन एज में इंसान अपनी मेच्योरिटी पर नहीं आता, तो फिर मेच्योरिटी की एज कौन सी होती है, दैट इज शबाब। इंसान क्लाइमेक्स पर होता है अपने सेंसेस के, इंसान क्लाइमेक्स पर होता है इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एट द एज ऑफ 40। ये वो एज है जिसमें अंबिया को रिसालत दी गई, अल्लाह ने अपने रसूल सेलेक्ट किए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिली है एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में इंसान की सलाहियतें क्लाइमेक्स पर होती हैं, और ये टाइम पीरियड आपका जो चलता है, ये तो यहां तो क्लाइमेक्स पर आती है ना, तो जो कहा जाता है अनशा के अंदर जो एज ब्रैकेट बताया गया है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जनरली 30 टिल 55। दैट पार्ट इज द अनशा पार्ट, जिसमें आपकी सारी सलाहियतें आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। सो टेक्निकली अगर किसी इंसान की जिंदगी 70-75 साल की है, उसमें ये जो 30 से लेकर 55 साल तक का टाइम है, हार्डली 20 से 25 साल, बहुत हो गया तो 30 साल, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ जिसका आप मोस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द टाइम जिसमें इंसान को अपने आप को अपने रफ से कनेक्ट होना होता है। इसलिए हदीस के मफहूम के मुताबिक जिसको 60 साल की जिंदगी मिल गई, अब उसके पास कोई हुज्जत नहीं है, क्या कहेगा वो अल्लाह को अगर उसने अब तक दीन पर आकर अमल करना शुरू नहीं किया। दिस इज द क्लाइमेक्स जो अल्लाह ताला इंसान को देता है, और अल्लाह चाहता है अनशा अल्लाह देता है इंसानों को, जनरली इंसानों को ये उम्र मिल जाती है, जिसको नहीं मिलनी होती अल्लाह उसको वक्त से पहले बुला लेता है। लेकिन हम सब सोच लें, ये वक्त है जिसको बेहतरीन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आप देखें ये टाइम होता है जिसमें दुनिया मैक्सिमम आपको अपनी तरफ खींचती है, बच्चे जवान हो रहे होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ रही होती हैं, मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने करियर के बिल्कुल क्लाइमेक्स पर होते हैं, उनको मैक्सिमम पैसा जमा करना होता है बिकॉज उनकी सेविंग उनके आगे औलाद के लिए सिक्योरिटी बन रही होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जब एक मर्द अपने प्रोफेशन में प्रॉपरली कंप्लीटली आ जाता है, एंडिंग एट 55 एंड 60 जब वो रिटायर हो रहा होता है, दैट्स द टेस्ट ऑफ दिस एग्जाम। और अल्लाह इसी पार्ट में कहता है अल्लाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, उसी को भूल जाओगे, उसी पर अपनी समात और बसारत और अफीदा को इस्तेमाल नहीं करोगे। वजअअला लकुमुस समअ वल अबसार वल अफीदा वल उकूला, नहीं आया अल्लाह ने तुमको समात दी, बसारत दी और अकल दी। नाउ देयर इज अनदर वर्ड अफीदा, अकल की बात पीछे आ चुके, हां जो सुनोगे जो देखोगे उससे थॉट पैटर्न डिवेलप होगा। अब थॉट पैटर्न डेवलप हो गया, अब यहीं रुक जाए मामला या आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर कहां जाएगा? जो सुना जो देखा उससे थॉट डेवलप हुआ, अब जो थॉट डेवलप हुआ वो इमोशंस में कन्वर्ट होगा, और इमोशंस की जगह है अफ़ीदा। जब इमोशंस आते हैं तो रब की मोहब्बत, रब से अटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी आती है। तो यहां समझ लें एक फिल इन द ब्लैंक है। वाजा अला लकुमुस समा वल अबसारा, फिल इन द ब्लैंक, इंटेलेक्ट और आपकी अकल वहां आ गई, एंड देन अफ़ीदा। अफ़ीदा के अंदर आपका अल्लाह से अटैचमेंट लेवल, इबादत का लेवल, स्पिरिचुअलिटी का लेवल आ जाएगा। यानी ये तुम्हारी जिंदगी के बेस्ट ईयर हैं इबादत के, अल्लाह के अर्श के साए में। जो 7 कैटेगरीज हैं उनमें से एक वो नौजवान है जो दौड़ दौड़ कर अल्लाह की इबादत करता था, और वो यही शबाब की उम्र आती है। شباب کی عمر میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتا تھا. دنیا ہو، رزق کی تلاش ہو، جاب اپرچونیٹیز ہوں، بزنس ایکسپینڈ ہو رہا ہو، فیملی بڑھ رہی ہو، ذمہ داریاں زیادہ ہو رہی ہوں، بٹ ڈونٹ فورگیٹ یور رحمان. اسپریچویلٹی کو مت بھول جانا. جنرلی انسانیت کیا کرتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ اب اللہ اللہ کریں گے. اللہ نے تو انشاکم کے اندر کہا یوٹیلائز یور سماعت بصارت اینڈ افئدہ ایز کمپیئر ٹو قلب. وٹ از دا ڈفرنس بٹوین قلب اینڈ افئدہ؟ قلب آتا ہے آپ کے ریگولر ایموشنز. اگر قرآن نے مینشن کرنے ہو ریگولر ایموشنز مینشن کرنے ہو تو قلب آتا ہے جس کی جمع قلوب آتی ہے. انٹینس ایموشن مینشن کرنے ہو میری ٹوٹل اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ ہو، مجھے اللہ سے محبت ہو، آئی کین ایکنالج ہم، آئی کین فیل ہم، آئی کین ڈسکس مائی میٹرز ود ہم، آئی کین ڈو مائی کانورسیشن ود ہم. اللہ ڈے ٹو ڈے میری مصروفیت میں، میرے ذہن میں، میرے خیالات میں اور میرے ایموشنز میں موجود ہو. عبادت کی شکل میں اللہ کی یاد میرے ساتھ ہر وقت موجود رہے. دس از افئدہ. افئدہ عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کا ایسا ٹکڑا جس کو روسٹ کیا گیا ہے. اسی لیے افئدہ دل کی اس کیفیت کے لیے آتا ہے جس میں ایموشنز انٹینس ہوتے ہیں. یعنی جس وقت آپ کسی سے بہت سخت محبت کرتے ہیں، عربی زبان میں اس وقت جو ایکسپریشن آتا ہے وہ قلب کا نہیں آتا، افئدہ کا آتا ہے. انٹینس محبت افئدہ، انٹینس نفرت افئدہ، انٹینس خوف افئدہ، انٹینس غم افئدہ. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو باسکٹ میں ڈال کر فلوٹ کر دیا تو افئدہ آتا ہے، بیکاز ایکسٹریملی اداس تھے، غم کا شکار تھے. جب آپ کسی کام کو ڈیڈیکیشن سے کرتے ہیں تو آپ دل میں قلب سے نہیں کر رہے ہوتے، کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ افئدہ، فؤاد سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیپچر کی ہے. یوز دا بیسٹ ٹائم آف یور میچیورٹی، آف یور یوتھفل ایئرز ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو مت بھول جانا اپنی اس دنیا میں. اور یہ ہے وہ تھاٹ پیٹرن جو آج ہمیں اپنی اولادوں کو دینے کی ضرورت ہے. پلیز دین کو کیجولی نہیں ٹریٹ کریں گھروں کے اندر. دین کیجول گیم نہیں ہے، دین از اے سیریس گیم، اٹس اے سیریس میٹر. اپنے بچوں کو صحیح تھنکنگ پیٹرن دیں، ان سے ڈسکس کریں. میرے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں ہوں اور مجھے مومن کیوں بننا ہے. یہ انفارمیشن ہمارے بچوں کے پاس ہونی چاہیے. ہم سنی مسلم کیوں ہیں بتاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہمیں کیوں سب صحابہ کی عزت کرنی چاہیے بتاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم اپنے بچوں کو اتنے ایمان کی طاقت دیتے ہیں کہ جب باہر کے سورسز سے اگینسٹ اسلام سارا ریبیلین آئے تو ہمارے بچے اپنے دین سے بدزن نہ ہونا شروع ہو جائیں. زیادہ تر جو ہمارے بچے اس وقت دین سے بدزن ہو رہے ہیں، یہ باہر کے کلچر سے جتنے سوال آ رہے ہیں وہ ان کو کنفیوز کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو گروم نہیں کیا ہے، ہم نے ان کو تیار نہیں کیا ہے. دس از اباؤٹ گیونگ دیم رائٹ تھاٹ پیٹرن. جب تک آپ ان کو صحیح اپروچ نہیں دیں گی، وہ مسلمان کیوں ہیں، ان کو نماز کیوں پڑھنی ہوتی ہے، ان کو وضو کیوں کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک جسٹ وضو کیسے کرنا ہوتا ہے، ہاں یہ بھی سکھائیں، لیکن ان کو وضو کیوں کرنا ہے یہ بھی تو بتائیں. وہ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کا کتنا اختیار ہے ہماری زندگیوں پر؟ ہماری زندگیوں میں جتنی بھی بلیسنگز اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آئیں کہاں سے ہیں؟ ابا تھوڑی لائے ہیں اصل میں، وہ دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے. یہ جو اتنی نعمتیں برس رہی ہیں اس میں ہمارا کیا کریڈٹ ہے؟ ہم میں کیا ایسی خوبی ہے کہ ہمیں مل گیا اتنا بڑا گھر، اور وہ جو فٹ پاتھ پر پوری رات گزار رہی ہے فیملی، ان کے پاس سونے کے لیے گدا بھی نہیں ہے، کسی میٹرس پر لیٹ سکیں، پلاسٹک کے اوپر ان کے بچے لیٹے ہوئے سڑک کے اوپر. کیا فرق ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ ہمارا کون سا امتحان لے رہا ہے؟ ڈسکس دیز تھنگس وتھ دیم. صرف ان کے گریڈس ان سے ڈسکس کرتے رہنا، वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहाँ स्कॉलरशिप कितनी आ रही है, उनके कितने एज आएंगे, उनके कितने ए स्टार्स आएंगे, वो सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, उस सब्जेक्ट के बाद फिर उनको इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी, उस इंटर्नशिप के बाद उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हो जाएंगी, फिर उनकी डिग्री कितनी वैल्यूएबल होगी, फिर उसके बाद उनको फाइनल जॉब कहाँ मिल सकेगी, किस मल्टीनेशनल में वो जॉब कर सकेंगे, किस जगह का हिस्सा बन सकेंगे, कहाँ फैक्ट्री खोल सकेंगे, यही सब और बस यही सब और बस यही सब। तो खुदा कहाँ गया दरमियान में से, रब कहाँ गया, रहमान कहाँ गया दरमियान में से। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लानिंग, और वो शय जो हमारी सारी प्लानिंग को एक टच से गिरा दे। एक बच्चे इतना लंबा लेगो का टावर बनाए, डोमिनो इफेक्ट, कितना बड़ा डोमिनो इफेक्ट आता है, सब बच्चे ने बैठकर जो है वो डोमिनोज लगा दिए, एक दूसरे भाई ने आके हल्का सा टच किया, क्या होता है, सब टावर भी गिर गया और सब डोमिनोज भी गिर गए। इतनी प्लानिंग दुनिया की, इतनी प्लानिंग, एक मौत का लम्हा आएगा, डोमिनो इफेक्ट, सब खत्म। अब कब्र में इन सारी चीजों का, जिस पर हम प्लानिंग कर करके वक्त लगा रहे थे, इनमें से किसका सवाल होगा? जिसका कब्र में सवाल होगा वो तो हम भूल ही गए, उस पर तो वक्त ही नहीं लगाया, उसके लिए तो टाइम ही नहीं था, उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था जिंदगी में, उसके लिए टाइम नहीं था, ये पैशन नहीं है हमारे अंदर। जब हम में नहीं है तो हमारे बच्चों में नहीं है, और हमारे बच्चे हमारी गलतियों की मैग्निफाइड फॉर्म होते हैं। डोंट जस्ट ब्लेम योर चिल्ड्रन, बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे बच्चे हमारी गलतियों का मैग्निफाइड फॉर्म है। हम सबको अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर अपने दीन को पैशनेटली लेने की जरूरत है, वो पैशन जो हमें अकल से भी दीन से जोड़ेगा, वो पैशन जो हमें फुआत के जरिए भी दीन से जोड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज द वेरी लॉजिकल प्रॉफिट। जितने किस्से, जितनी आयात आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ती हैं, जितना रैशनल कुरान में आपको मिलता है रिलीजन्स के बारे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्सों में बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल बात करते थे या इमोशंस अटैच थे उनके? हाईली इमोशनल अटैचमेंट इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से थी, इसलिए बहुत से मुफस्सरीन ने उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उनको इश्क था अल्लाह से। जनरली स्कॉलर्स इश्क का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, मगर आप देखते हैं कि बहुत शायरी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ करने के लिए इश्क का लफ्ज लाया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वॉज इंटेंस इन मोहब्बत विद अल्लाह सुबहाना व तआला, उनका फुआद अल्लाह से अटैच था, वो भूलते नहीं थे अल्लाह को। ऐसा नहीं होता था कि एक शमवाल का चांद नजर आने की देर है, फिर सारा कुरान, सारी तालीमात, सारी अच्छी बातें सब फिजल आउट कर जाएं। बिल्कुल जैसे हमारे बच्चे चार बातें सुनते हैं बाहर की दुनिया की, और इंटेलेक्चुअली अपने दीन को डिफेंड नहीं कर पाते, इसलिए कि उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती। और ये हाई टाइम है, इस वक्त इतना टाइम हो चुका हम मुसलमानों को अपनी गफलत में कि इस दीन को रिवाइवल की जरूरत है, इस दीन को, फाउंडेशन को दोबारा से इस वक्त अपनी उम्मत में नौजवानों को बताने की जरूरत है। अपने बच्चों को दीन की मोहब्बत दिखाइए, अपने बच्चों को रसूल अल्लाह की नरमी दिखाइए, अपने बच्चों को अपना समझें, सिर्फ दुनियावी एंगल से नहीं, हमें आखिरत में भी चाहिए। वो हमारा सदका जारिया है, हम नहीं चाहते क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़ के कहें अल्लाह पहले मेरी माँ को जहन्नुम में डाल, इसने मुझे नहीं बताया था, इसको मेरी दुनिया की फिक्र थी, इसको मेरी आखिरत की फिक्र नहीं थी, इसने मुझे गाइड नहीं किया। तो जितना ये चीज हमारी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगा इंशाल्लाह, जितना आप कुरान के सामने आकर बैठेंगे, आप चाहती हैं आपके बच्चे के अंदर दीन के बारे में पैशन आए, प्लीज कनेक्ट देम टू क्लासेस। और यहां रहने वालों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, इतनी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हो रही हैं। आप ढूंढिए अपने आसपास के इलाकों में जो आपके बच्चे की रूटीन से सूटेबल हो, उनको भेजिए, हफ्ते में एक दफा भेजिए, 15 दिन में एक मरतबा भेजिए, महीने में एक मरतबा भेजिए, सुनाने की तरफ लेकर आइए। कल हमने सुनाने पर बहुत तफसील से बात की थी, जितना इंशाल्लाह उनका इंटेलेक्ट अल्लाह के साथ जुड़ेगा उतना उनको कन्विक्शन मिलेगा कि वो मुसलमान क्यों हैं। हाँ ये जरूर है, अल्लाह ने बता दिया कम लोग हैं जो इस फितनों के दौर में अपने इंटेंशंस को अल्लाह के साथ अटैच करते हैं, कलीलम मा तशकुरून, कम हैं जो अल्लाह से मोहब्बत में इंटेंस होते हैं, कम हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ दीन से आकर जुड़ती है اور جن کا ایموشنل اسٹرینتھ دین سے آ کر جڑتا ہے. اللہ نے کہا ہے کم ہیں جو شکر کرتے ہیں. کس پر شکر کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ نے یوتھ فل ایئرس دیے ہیں, کم ہیں جو اس کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ٹائم, ہم نے اللہ کے لیے لگانا ہے. کم ہیں جو اپنی سماعت اور بصارت اور فؤاد کو اللہ کے راستے پر استعمال کرتے ہیں. نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ نعمت کو وہاں لگایا جائے جس نے وہ نعمت دی ہے. کم ہیں جو اپنی سماعت اور اپنی بصارت اور اپنی انٹلیکٹ اور اپنے ایموشنز کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. جسٹ انکلوڈ یور سیلف ان دس مائنر مائنورٹی. یہ مائنر مائنورٹی جنت میں جائے گی, میجورٹی فوجوں کی فوجیں, گروہ کے گروہ جہنم میں گرنے والے ہیں. سو کم ان مائنر مائنورٹی. یہ مائنر مائنورٹی وہ ہے جو شکر گزار ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا کلوزر بتا دیا. آیت نمبر 22 میں تھا, پیدا ہوئے اور تمہیں وہاں تک پہنچایا جہاں تک تم اسپراؤٹ کر کے اپنی ایموشنل اور انٹلیکچوئل میچورٹی پر آ گئے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض, کہہ دیجئے ان سے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اس کی طرف تم لپیٹ لیے جاؤ گے, اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. ذرأ, ذال, را, حمزہ, یہ آتا ہے کسی چیز کو بوڑھا کرنا, اصل میں کسی چیز کو ودرڈ کر دینا, کسی چیز کا ایسے پھیلنا کہ اس کے بعد اس کا پھر دوبارہ اختتام ہونا شروع ہو جانا. اس کو کہتے ہیں ٹو اولڈ, ٹو میچور. پہلا والا تھا, اللہ آپ کو میچورٹی تک پہنچا